मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 5 दिसंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं वंदना राजपूत, आप कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं, अर्जुन सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और अंकित सिंह कोंडरा उत्तर प्रदेश से हैं। तो वंदना, अर्जुन और अंकित, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग बात करेंगे धर्म और चुनाव विषय पर। इस विषय को मैंने क्यों चुना है इस पर भी हम बाद में ही बात करेंगे। आइए पहले दूसरे समाचारों को हम देख लेते हैं। एक मित्रों आपने सुना कि जो अभी केरल और तमिलनाडु में जो एक चक्रवाती तूफान आया हुआ है उसके बारे में आप सब सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और कल के न्यूज में आपने सुना होगा, खासकर डीडी न्यूज में ये बात थी कि वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि क्या वहां सहायता चाहिए, उन सब को लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, ये वाक्य आपने सुना। फ्रेंड्स ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय है और आपदा प्रबंधन बकायदे आपके सिलेबस में है, थर्ड पेपर जो आपका जनरल स्टडीज का है उसके अंतर्गत यह आता है और हर साल आपदा प्रबंधन से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, कभी कभी दो प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं। आप ये मत समझिएगा फ्रेंड्स कि अगर 20 में यार एक ही प्रश्न पूछा जाता है तो ठीक है, चलो नहीं भी बनेगा तो क्या होगा, या प्रश्न इस तरह के होते हैं आसान से लगते हैं कि इन पर हम कुछ न कुछ तो लिख देंगे। मैं समझता हूं मित्रों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सिविल सर्विस की आप ईमानदारी के साथ सही तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपदा प्रबंधन के बारे में भी आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अच्छा उत्तर तभी दे सकेंगे जबकि आपको इसकी बेसिक नॉलेज मालूम हो, अदरवाइज आप कुछ भी ऊपर ऊपरी बात लिखेंगे, सतही बातें लिखेंगे और फिर उससे आपको नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन इतने नहीं मिलेंगे कि लिस्ट में आपका नाम आ जाए, इस बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। तो अब इसके बारे में आप करेंगे क्या? सिंपल सी बात है कि जैसा मैंने कहा कि आपने एक वाक्य सुना कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, देखिए आपके दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि जो तूफान आया है वो केरल में आया है, वो तमिलनाडु में आया है, अब वो गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपने देखा लक्षद्वीप समूह में पहुंच गया है, ये सारे के सारे राज्य हैं, ठीक है। तो राज्य का संकट है, तो राज्य इसके बारे में एक्शन ले, जो बैठक हो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो या जो बैठक हो वो फिर वहां के चीफ सेक्रेटरीज की अध्यक्षता में हो। ये कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली में क्यों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको क्या लेना देना? मित्रों उनको लेना देना है और ये आप तब जान सकेंगे जब आप सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। मैं देखिए इसके विस्तार में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं तो केवल इसके माध्यम से आप तैयारी कैसे करेंगे इसका एक संकेत देना चाह रहा हूं। मैं यहां थोड़ा सा संकेत और दे दूं कि 2005 के आखिरी में सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया था और आपको इस अधिनियम की बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मालूम ही होनी चाहिए। और उसके तहत मित्रों कई संस्थान जैसे बनाने की बात की गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिसे आप कह सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर, और इसके बाद फिर राज्य के स्तर पर, और इसके बाद फिर जिला के स्तर पर भी। जो केंद्रीय स्तर था उसके वहां जो बनना था उसका नाम था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो राज्य के स्तर पर बनना था वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और जो जिला के स्तर पर बनना था जो जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होना था वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर है मित्रों, इसकी फिर जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति जो बनाई गई, जो इसके बारे में निर्णय लेगी, इस काम को देखेगी। उसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति, और उसके जो हेड होते हैं, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, राइट? और आपको मालूम है कि जब किसी भी राज्य में इस तरह की आपदा की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार मदद करती है। तो केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी, कैसे इंस्ट्रक्शन देगी, कैसे उनको फंड्स देगी? तो डेफिनेटली उसमें जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कुल मिलाकर यह मित्रों कि आपको अपनी तैयारी को इस तरीके से स्वरूप देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक चक्रवाती तूफान की बात है, आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये घटना घटित हो रही है, और चूंकि ये भारत में घटित हुई है, इससे पहले तो आप दूसरे तूफान आप अमेरिका में देख चुके हैं, अमेरिका कैरेबियन देशों में आए थे, तो आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, एक जो छोटा सा एक दो जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, मैं केवल इशारे के तौर पर उन्हें बताना चाहूंगा। पहला तो आपने देखा कि भारत श्रीलंका मैच में जो एक बाधा आई थी वो खासकर प्रदूषण को लेकर आई थी, कि दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने कहा था कि हमको खेलने में दिक्कत हो रही है। ये एक ऐसी घटना है, सच पूछिए तो, जिसने भारत की छवि को आप कह लीजिए कि विश्व की नजरों में कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाया है। लेकिन ये एक सच भी है कि क्या सच में दिल्ली इतना प्रदूषित शहर हो गया है? और हो गया है तो एक घटना के रूप में आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले लेती है। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स, वो शशि कपूर जी को लेकर है। आप लोगों ने न्यूज सुनी कि कल वो नहीं रहे, तो आप सबकी ओर से, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना भी कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मित्रों, शशि कपूर एक बहुत ही गजब के अभिनेता रहे हैं, और आप लोगों ने डेफिनेटली उनकी फिल्म देखी होंगी, और खासकर जो थोड़े से आगे जनरेशन के 50+ में हैं वो तो शशि कपूर जी के बहुत ही फैन भी रहे होंगे। कोई दो राय नहीं कि न केवल वो बहुत ही अच्छे अभिनेता ही थे, बल्कि एक सिनेमा या कला के प्रति जो एक अलग किस्म की प्रतिबद्धता होती है वह भी उनमें थी। तो दोस्त, आज अखबारों में काफी कुछ उनके बारे में आया हुआ है, अगर आपकी रुचि हो तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि कल हम लोगों ने वंशवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। वंशवाद पर कल एनडीटीवी पर 9 बजे के प्रोग्राम में बहुत अच्छी बहस हुई थी जो रवीश जी पेश करते हैं। उसमें नीरजा चौधरी आई थी और योगेंद्र यादव आए थे, दोनों ही बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे लगता है कि यदि आपके लिए संभव हो सके तो आप इसे जरूर देखिए, अदरवाइज पढ़िए। एनडीटीवी का जो ब्लॉग सेक्शन है उसमें रवीश जो भी प्रोग्राम देते हैं वह लिखित रूप में मौजूद रहता है, आप वहां लिखित रूप में भी जाकर उसे पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कई नए पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो सामान्यतया अखबारों में नहीं आ पाते और हमारे अपने दिमाग में भी जो पैदा नहीं होते हैं। मित्रों, फिर एक छोटी सी खबर जो है वो आपको मालूम है कि पिछले 1-2 दिनों से दिल्ली में आयुष उद्योग के ऊपर विश्व सम्मेलन हो रहा है और उसमें भारत तो भाग ले ही रहा है, दुनिया के 60 देश भी उसमें आए हुए हैं। आयुष का आपको मालूम होगा कि एक जो ट्रेडिशनल पद्धति है, हमारी परंपरागत पद्धति है खासकर चिकित्सा की, उसको लेकर के एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है, और ये दुनिया का पहला देश है जिसने खासकर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। ये जो आयुष है मित्रों, इसके अंतर्गत आयुर्वेद के माध्यम से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सब के माध्यम से किस तरीके से ट्रीट किया जाए पेशेंट को, उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, और इसके जगह जगह पर आपने सुना भी होगा कि बकायदे हॉस्पिटल भी, चिकित्सालय भी खुल चुके हैं। उसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक बात कही आयुष पर, हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, वो आपको कहीं थोड़ा सा नोट कर लेना चाहिए या दिमाग में थोड़ा सा ये बात रखनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि ये जो आयुष उद्योग है ये आने वाले 3 सालों में उनको लगता है कि इससे 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, 10 लाख लोगों को, और लगभग 2.5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। मतलब किसी न किसी रूप में वो फायदा उनको इस उद्योग, इस रोजगार, इस उद्योग से, आयुष उद्योग से मिलेगा। तो ये एक आंकड़ा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं कि केवल भारत की समस्या नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी समस्या है। तो उस दृष्टि से यह एक नया तथ्य जैसा होगा, आपको अगर मालूम हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये फायदे का सौदा रहेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, मुख्य विषय धर्म और चुनाव। मैंने ये विषय क्यों चुना है फ्रेंड्स, अभी अखबारों में आपने दो घटनाएं, दो तरह की बातें, दो घटनाएं अलग अलग पढ़ी हैं जो आसपास ही हुई, एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहला तो यह कि हमारे राहुल गांधी जी जब सोमनाथ मंदिर में गए तो उन्होंने गैर हिंदू रजिस्टर में जब अपने हस्ताक्षर किए तो उसको लेकर के फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भाई बताएं कि ये जो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वे क्या हैं, मतलब हिंदू हैं या गैर हिंदू हैं, राइट। उसके बाद फिर कांग्रेस का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, वो हिंदू ही नहीं है बल्कि जनेऊधारी हिंदू है, यानी कि वो ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने जनेऊ भी धारण कर रखा है। ये दो अलग अलग बातें हुई, एक तो सोमनाथ मंदिर की विजिट और उससे जो एक प्रश्न खड़ा किया गया उसका उत्तर। अब आप देखें कि ये दोनों संदर्भ गुजरात चुनाव से जुड़े हुए हैं, गुजरात चुनाव, राइट। अब मित्रों, सिविल सर्विस का इससे क्या लेना देना, देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होती सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। जो पॉलिटी शब्द है जो आपके सेकेंड पेपर में, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, इनफैक्ट वो इसी से संबंधित है। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो संविधान है वो लिखित संविधान है, राइट। लेकिन पॉलिटी क्या है कि भाई ठीक है, संविधान में तो जो भी लिखा हुआ है और सारे राजनीतिक दल हो या सरकार हो या जुडिशरी हो, सबको संविधान के दायरे में ही रहते हुए काम करना है। लेकिन इनफैक्ट वो दायरे में रहते भी हैं लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिसे आप कह लीजिए कि ये बड़ी संविधान की आत्मा के अनुकूल हो रहा है। चीजें थोड़ी सी भटक सी भी जाती हैं, यानी कि संविधान के अंदर भी इतना बड़ा दायरा है, इतना स्पेस है कि आप संविधान को तोड़ते हुए भी संविधान में रहते हुए की स्थिति में जाने जा सकते हैं। जैसे अब आप देखिए कि गुजरात चुनाव के संदर्भ में ये सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों, भारत में एक ऐसा वक्त था जब चुनाव के दौरान जो सबसे ज्यादा कोशिश होती थी वो होती थी कि किस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को संतुष्ट किया जाए, खुश किया जाए, और ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसको अपने कब्जे में लिया जाए, तो उसी तरह के वायदे होते थे। धीरे धीरे चुनाव के वर्ष आगे बढ़े, चुनाव का चरित्र बदला, मतदाताओं की अपेक्षाएं बदली, नई पीढ़ियां आई, तो अब पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो। यहां कहीं ना कहीं आप बात कीजिए पुरानी पीढ़ी के लोगों से, तो वो अपने को ठगा हुआ भी महसूस करते थे, उनको लगता था कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। तो अब ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अगर गुजरात के मतदाताओं के दिमाग में ये बैठ गई कि राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे पक्ष में मतदान ही वो न करें, उनकी ये इच्छा कि नहीं हम तो हिंदू को वोट देंगे। अब देख रहे, तो ये एक चुनावी विकास की प्रक्रिया में चुनावी स्वरूप जो बदला है उसकी एक छोटी सी झलक है। लेकिन अब आप इसमें दूसरी बातें देखिए, जहां से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रश्न बनते हैं। मित्रों, मैं आपके सामने तीन प्रश्न यहां रख रहा हूं। ये बताइए कि पहला प्रश्न है कि क्या मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिए हिंदू होना जरूरी है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है तो वो मतदाताओं को क्या प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम इस स्टेज पर आ गए हैं, इससे जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि कोई हिंदू नहीं है तो क्या वह योग्य नहीं है, नेता बनने के योग्य नहीं है, या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, या मतदान करने के योग्य नहीं है, या क्या है, मतलब उसकी योग्यता क्या हिंदू होना, या यूं कह लीजिए कि अपने आप में योग्यता है। और एक ऐसे देश में जहां संविधान धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, या एक ऐसे देश में जो शुरू से ही समन्वयकारी संस्कृति को लेकर के चला है, जिसने अपने अंदर पता नहीं कितने देशों की संस्कृति को रचाया है, बसाया है, और जहां लगभग लगभग सारे धर्म और संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं और लंबे अरसे से रह रहे हैं। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अब आप देखिए कि जो संविधान से जुड़ा हुआ है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, इनके आधार पर मतदाताओं को रिझा नहीं सकता, मत नहीं मांग सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, राइट। अब आप देखें कि यहां जो अभी हम बात कर रहे हैं, अब ये सीधे सीधे तो आप यूं कह लीजिए कि हिंदू और गैर हिंदू के नाम पर वोटों को बांटकर वोट मांगने की बात नहीं की जा रही है, सीधे सीधे कोई बात नहीं हो रही है। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि हम हिंदू हैं तो हमें वोट दीजिए, वो हिंदू नहीं है तो आप उसे वोट मत दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव कुछ इसी तरह के होंगे ऐसा लग रहा है। तो यहां आपको दो चीजों में देखिए टकराव दिखाई देगी। एक चीज है वैधानिकता, लीगलिटी। लीगलिटी के तहत ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो अवैध हो जाएगा, तो नहीं कहा जा रहा है, यानी कि अवैध नहीं है। लेकिन व्यावहारिकता में क्या दिखाई दे रही कि नहीं, इशारा तो कहीं ना कहीं उसी तरफ है। तभी उन्हें कहना पड़ा कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष को कि के लिए कि नहीं वो हिंदू हैं, और हिंदू क्या मतलब, बल्कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं। तो व्यावहारिकता और यहां आपको बकायदे वैधानिकता में एक टकराव सा दिखाई देगा, ये तीसरा प्रश्न है। तो मित्रों, ये तीन प्रश्न हैं जो इन घटनाओं से पैदा होते हैं, बनते हैं, और यही है आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर की खूबसूरती, जहां आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी समझ से अपने उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर, जो प्रेस क्लिपिंग का स्टेज है। तो इस पे तो मित्रों मैं कुछ ज्यादा कहने की स्थिति में होता है नहीं हूं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। प्रेस क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें देख लेंगे। अब अंतिम चरण है ईमेल का चरण। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं आदित्य गौरव, शालिनी मिश्रा, राहुल सिंह राठौड़ नागपुर महाराष्ट्र से, आकाश कुमार नालंदा बिहार से, प्रत्यूष मोहन, सौरभ पाठक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान से, और विक्रम कुमार मुंगेर बिहार से। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।